করেছে।
কম্পিউটার ক্লাউড,
নো নো ক্লাউড,
রেকর্ডিং ইন প্রোগ্রেস।
ब्रेक हो गई, आप लोगों की बातें बातें हो गई बीच में, ठीक है अब क्लास शुरू कर लेते, सही है। बच्चों लोग, आप लोग बहुत बातें करते हैं, छोटे बच्चों, ठीक है, लेकिन बातें नहीं करते क्लास क्लास में, बातें सही है। चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लहु वअदल्लाहुल हुस्ना, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو کلاس کس چیز کی چل رہی ہے؟ صحابہ کرام کی سیرت کی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو صحابہ کرام ہیں उनकी जिंदगी के हालात, उसको सीरत सहाबा भी कहते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग अशरा मुबशरा सहाबा का पढ़ रहे थे, और अशरा मुबशरा में से कौन से वाले सहाबी का पढ़ रहे थे, चले आप इंतजार कर रहे थे, सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ रहे थे। तो आखिरी बात कोई और बता दे कि हम क्या पढ़ रहे थे। जी जुने,
दस मशहूर, दस इस्लाम
अच्छा कोई और अगर इसको थोड़ा सा और बता सके, क्या थी उन्होंने जो बताया, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था। जी मोहम्मद, हाँ ठीक है, हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा, औरत होती है ना या गर्ल होती है, तो उनके लिए अनहा बोलते हैं। वो और उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अनहु, क्योंकि अब ये तो मर्द है ना, तो इनके लिए अनहु, ये दोनों जो हैं वो उन 10 खुश नसीब लोगों में से थे जो सबसे पहले इस्लाम लेकर के आए, ठीक है। तो साबिकून अव्वलून कहा जाता है ऐसे लोगों को जो कि सबसे आगे थे इस्लाम लाने के अंदर, साबिकून अव्वलून, द फर्स्ट वंस हु preceded everyone, या proceeded everyone, क्या कहें, preceded everyone, है ना। तो सबसे आगे आगे जाने वाले ये लोग थे। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो साथ ईमान ले आए थे। अच्छा, इनके ये ईमान लाने का जब उमर रतान को पता चला था, जो कि फातिमा रतान के सगे भाई थे, राइट, इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब, फातिमा इब्ने खत्ताब, उन्होंने इनको बहुत मारा था। वो वाकया क्या हुआ था आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, कई दफा सुना होगा, और इस अशरा मुबशरा की सीरीज में भी हम उमर अजान के हालात जिंदगी में उसको आप दोबारा भी सुना चुके हैं कि क्या हुआ था कि हजरत उमर अजान जो थे ना, ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है। तो एक दिन पहले ही, गालिबन एक ही दिन पहले, हजरत उमर, हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह, इस्लाम को आप मदद अता फरमाइए, तकवियत अता फरमाइए, अमर से या उमर से, किससे, अमर से या उमर से। तो अमर कौन था? कोई और नहीं, अबू जहल, अमर बिन हश्याम, जो कि अबू जहल नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, ठीक है। क्यों कहा नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अबू जहल, ये कोई बताएगा? कोई और आपके पास? चलिए आप ही बता दें।
बहुत ज्यादा जहीन थे, तो उनको अबुल हकम के नाम से जाना जा रहा था। आसोबाजी थी तो उन्होंने नहीं मानी, तो आसोबाजी अबुल
ये तो ऐसी हो गया कि शैतान, हजरते शैतान थे लेकिन नबी अलैहिस्सलाम था। इतनी तमीज के साथ उसका नाम क्यों ले? उन्होंने नहीं बात मानी हजरत। हमने भी एक दफा मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि शिया हजरात जो हैं वो, ने हमें जवाब दिया कि ये ऐसे ही हुआ कि कोई कहे कि हजरते शैतान रांदे दरगाह हुए। तो भाई बात, अल्फाज जो है वो हम उस देख देख के सवाल करते हैं ना, किसके लिए अदब का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए नहीं करना है अदब का लफ्ज। जी
ऐसे पढ़ा के जो है ना, वो इतनी हिम्मत जिस तरह का नाम है, तो उसके बावजूद भी जो हकीकत में नहीं पहचाना, तो ये नहीं रहा।
सही, तो अबुल हिकम कहते थे, हकम कहते थे, हकम, सही। तो उसको ना लोग कहते थे ये तो हिकमत का बाप है, ये तो बहुत हकीम इंसान है, बहुत ही वाइस किस्म का इंसान है, लेकिन उसने सबसे जो अहम बात थी उसी को मानने से इनकार कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू तो अबू जहल, तुम तो अबू जहल, ठीक है। और उसका फिर लकब उसके बाद आज तक अबू जहल ही मशहूर है। तो अमर बिन हशाम लेकिन था तो बहुत जहीन ना, हाँ, तो बहुत ज्यादा हिकमत वाला, बहुत ज्यादा एफिशिएंट और जबरदस्त किस्म का काम करने वाला दुनिया वाले। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ, अल्लाह इसको हिदायत की तौफीक अता फरमा दें, या उमर को, क्योंकि उमर रतान वो भी ऐसे ही थे, ठीक है ना, एम्बेसडर थे, लोग बाकायदा एम्बेसडर बना के उनको भेजते थे, लंबे चौड़े और बहुत ही अक्लमंद भी थे और बहुत ही खरे इंसान थे, ये इनकी खसूसियत थी, इंतहाई खरे इंसान थे, झूठ वूट नहीं बोलना आता था इनको, ठीक है, धोखा वो का देना इनको आते ही नहीं था समझने, ऐसा थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस वाली खसूसियत, गालिबन अल्लाह आलम, लेकिन बजायर ऐसी लगता है कि इनकी इस खसूसियत की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हिदायत अता फरमाई, ठीक है। तो इसका वाकया क्या हुआ कि उमर अतान जो है ना, वो कहते थे भाई ये क्या मुसीबत पैदा हो गई है कि ये शख्स जो है इसने नबुवत का दावा कर लिया है, पहले तो सब कुछ ठीक था, वी आर हैविंग अ ग्रेट लाइफ इन मक्का मुकर्रमा, एवरीवन वाज लिविंग टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी एंड, आना के ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन होता है कि यार अच्छा खासा तो हम जिंदगी गुजार रहे थे पिकनिक्स एंड पार्टीज वगैरह के अंदर, ये कौन से आ गए मौली साहब, इन्होंने आके बोलना शुरू कर दिया ये मत करो, ऐसे नहीं करो, ये वो नहीं करो, ऐसा करोगे तो सजा मिलेगी, ऐसा करोगे तो जजा मिलेगी, ये क्या भाई, ठीक है। अब जब से ये आए हैं तो इसके बाद से क्या शुरू हो गया है कि कुछ लोगों ने इनकी बात मान ली है और इनके हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया है, और कुछ लोगों ने इनकी बात नहीं मानी है। तो अब जो है ना, वो हमारे अच्छे खासे वन बिग हैप्पी फैमिली, वी हैड अ वन बिग हैप्पी फैमिली, ठीक है, वन बिग हैप्पी फैमिली के अंदर जो है ना वो टूट गई है वो फैमिली, कुछ लोग इनके हक में हो गए हैं और कुछ लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, ये इनके दुश्मन, ये इनके दुश्मन, ठीक है, ये तो लड़ाई लड़ाई दंगा फसाद शुरू हो गया है, वन बिग हैप्पी फैमिली खराब हो गई सारी की सारी। हम भी यही कहते हैं ना, हमारी वन बिग हैप्पी फैमिली है, मौलवी साहब कौन पैदा हो गए, मुसीबत हर वक्त बोलते रहते हैं, पर्दा करो, ये ना करो, वो ना करो, नबी अलैहिस्सलाम भी यही करते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही काम किया था कि भाई अल्लाह, वन बिग हैप्पी फैमिली इज नॉट वॉट वी वॉन्ट, वन बिग हैप्पी फैमिली इज नॉट वॉट वी आर मेड फॉर, हम इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजे गए कि वन बिग हैप्पी फैमिली के अंदर रहें, बल्कि हम यहाँ पर अल्लाह की बंदगी के लिए भेजे गए हैं ना, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए भेजे गए। हाँ, अल्लाह का हुक्म मानने के बाद वन बिग हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह का हुक्म माने और वन बिग हैप्पी फैमिली की तरह से रहे। लेकिन अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह का हुक्म तोड़ करके कोई वन बिग हैप्पी फैमिली नहीं, तो अल्लाह ताला फिर जन्नत में वन बिग हैप्पी फैमिली देंगे। इस दुनिया में हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इस दुनिया में हमें नहीं चाहिए ऐसी वन बिग हैप्पी फैमिली, जन्नत में मिलेगी, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला वादा पूरा करेंगे। तो इसको ईमान कहते हैं, इसके बगैर ईमान नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहरहाल, तो उमर रजान जो थे वो तो कहते यार ये क्या मुसीबत पैदा हो गई है, चलो आज जो है ना मैं किस्सा ही तमाम कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इनको जो है ना वो खत्म कर देता हूँ, कत्ल कर देता हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उर्दू का मुहावरा है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब ये होता है कि जो रूट ऑफ द नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, जो रूट ऑफ द इविल है ना, उनके उस वक्त जो ख्याल था रूट ऑफ द इविल, जब रूट ही को आप खत्म कर देंगे तो सारा इविल खत्म हो जाएगा। वो इविल समझते थे नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वो इस इरादे से जब कत्ल करने के लिए निकले तो रास्ते में एक सहाबी मिले, वो पहले ही मुसलमान हो चुके थे लेकिन पता नहीं था इनको कि वो मुसलमान हो गए। तो उन्होंने इनको देखा कि अरे उमर जो है ना ये तो तलवार जो है ना वो ऐसे ले करके अपने हाथ में इस तरह से चल रहे हैं। वो लोग तलवार तो अपने साथ रखते ही थे, ठीक है ना, लेकिन वो उसके नियाम के अंदर, नियाम जो उसका जो शीत होता था उसके अंदर होती थी ना, ठीक है, लेकिन ये जो है ऐसे लेके जैसे बस अब किसी को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा उमर किधर भाई, क्या हो गया, खैरियत तो है, सब कुछ ठीक है। उमर रजा ने जवाब दिया ये जो है ना हमारे शहर के अंदर, हमारे कबीले के अंदर एक नई मुसीबत पैदा हो गई है, मैं उसको आज खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना, अब उसके बाद देखी जाएगी। यानी ऐसे बहादुर थे और ऐसे क्लियर हेडेड थे, इन्होंने कहा कि बस मैं मुसीबत खत्म करूं फिर लोग मुझे पकड़ के मार दें कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, देखी जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार उमर को तो रोकना ना, उन्होंने सोचा कि उमर को रोकना इस गुस्से की हालत में तो मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर एक ब्रिलियंट आइडिया डाल दिया एकदम उसी वक्त, अल्लाह ताला ने बचाना होता है ना तो अल्लाह ताला इस तरह से आइडियाज डालते हैं। तो उनके दिल में आइडिया आया कि उमर को जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर दो, थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दो, तो उतनी देर में ना फिर मैं जाके जल्दी से मिसर बता दूंगा और आप सर में जो है वो किसी कहीं छुप जाएंगे जाकर के, बच जाएंगे उमर से। तो उन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे मुश्किल बात जो थी ना, जो उमर के रतान के लिए जो बहुत मुश्किल बात थी वो बोली। वो क्या थी कि उमर तुम उनका बाद में ख्याल करना, पहले अपने घर की तो खबर लो, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी तुम्हें पता है तुम्हारी अपनी बहन मुसलमान हो चुकी है, सगी बहन तुम्हारी मुसलमान हो चुकी है। अब ये जो खबर थी ना उमर रतान के लिए, ये तो बिजली बन के गिरी ना, जैसे बिजली बन के गिरी। उन्होंने कहा अच्छा मेरी अपनी बहन खत्ताब की बेटी वो मुसलमान हो गई है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। उन्होंने अपना इरादा थोड़ी देर के लिए मुअख्खर किया और पहुंच गए अपनी बहन के घर, ठीक है। तो बहन की घर के घर पे जाकर के दरवाजा कुछ बजाया या क्या क्या आवाज दी, तो बहन के शौहर कौन थे, सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला, जिनका हम वाकया पढ़ रहे हैं, वाकया पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जब दरवाजे से ऐसे देखा ना तो उनका याद दीजिए उमर, अच्छा अंदर वो लोग कर क्या रहे थे, सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बीवी हजरत फातिमा बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों के दोनों हजरत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक और मुसलमान थे हो चुके थे खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे बैठ के ये कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, सीख रहे थे कुरान शरीफ, ठीक है। तो हल्की हल्की जो है ना वो आवाजें तो होती है ना, बुलंद आप तिलावत सीखते हैं तो आवाज तो थोड़ी सी आती है ना, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये आवाज तो आ गई थी कि अंदर कुछ हो रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने, शरीफ तो थे ये लोग, शरीफ घराने के लोग थे, यानी कि भाई किसी के घर में दाखिल होने से, तो बेशक अपनी बहन ही क्यों नहीं हो, ठीक है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले जरा आवाज दे देनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, इजाजत दे के जाना जाना चाहिए। तो इन्होंने देखा ना कि उमर रतान जो है वहां पे खड़े हुए हैं और वो आना चाहते हैं, उनके पास तो तलवार है और गुस्से में लगते हैं। तो उन्होंने आके अंदर बताया, खबाब रतान जो है ना वो तो पीछे जाके छुप गए कहीं, ठीक है, कि मुझे तो देखे ना मुझे तो कत्ल ही कर देगा ये, तो वो छुप गए जाकर के। अब ये अंदर आए और आकर के पूछा, फातिमा तुमने और तुम्हारे शौहर ने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी मोहम्मद के हाथ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके हाथ पे तुमने जो है वो बैत कर ली है, उनकी बात मान ली है, ये कैसे तुमने किया? उन्होंने कहा हाँ सच बोला उन्होंने, हाँ हमने कर लिया, तुम्हें पता चल ही गया तो ठीक है। तो इन्होंने, इनको तो इतना गुस्सा था ना, और बड़े मजबूत थे, ताकतवर थे, इन्होंने तो मारना शुरू किया दो इनको, सईद बिन जैद अतान, क्योंकि मर्द थे ना, मर्द को मार रहे थे, तो मर्द को मारना शुरू किया। सईद बिन जैद अतान वो भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो भी लंबे चौड़े से थे, लेकिन उमर अताने से ज्यादा नहीं थे वो। इतना मारा, इतना मारा कि किताबों में लिखा है कि खून निकलना शुरू हो गया ना उनका। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो अपने शौहर को बचाने के लिए आगे आई, तो उस स्पर ऑफ द मोमेंट पे ना इन्होंने जो यू करके उनको धक्का दिया ना, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद भी जाकर के गिरी। ठीक है, तो अब जब बहन गिरी ना, तो अब एक होता ना भाई, मर्द मर्द को तो मारता है, लेकिन औरत पे हाथ उठाना ये शरीफ मर्दों की बात नहीं, कि काम नहीं होता। ठीक है, तो अब जो है ना इनको थोड़ा सा ये हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया ना, औरत के ऊपर हाथ उठा दिया, अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, तो थोड़ा सा वो है। और फिर उसके बाद बहन ने कहा कि उमर तुम मेरे जिस्म में से जान तो निकाल सकते हो, लेकिन हमारे दिल में से ईमान नहीं निकाल सकते, कर लो जो करना है तुम्हें, हमने इससे वापस नहीं जाना। जो उन्होंने कहा उसका मफहूम हमने अजर जी से यही सुना, कि ऐसे ही उन्होंने जवाब दिया ना कि नहीं हमने तो कुछ कर लो, तुम खत्ताब के बेटे हो ना, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, मैंने भी तुम्हारी बात नहीं, मैंने भी पीछे नहीं हटना। अब जब इतना रिजॉल्व देखा ना उन्होंने अपनी बहन का और अपने बहनोई का, जो कि कजन भी, कजन के बेटे भी लगते थे, इनके भतीजे भी लगते थे, तो अब जो है ना ये थोड़े से नरम पड़े। ठीक है, और उन्होंने कहा अच्छा इतना तुम्हारा, इतनी कोई बड़ी चीज के ऊपर तुम डटे हुए हो, यकीनन वो कोई अहम चीज होगी। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम जो है ना फिर क्या कर रहे थे मेरे आने से पहले, तुम कुछ पढ़ रहे थे, तो मुझे वो सुनाओ, मुझे वो दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। अच्छा उमर रताना, आपको पता होगा, याद होगा, अगर हमने जब उनके बारे में पढ़ा था, तो उमर रताना वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन कुरैश जिनको के पढ़ना लिखना आता था। इनको पढ़ना, हर एक को पढ़ना लिखना नहीं आता था, चंद लोगों को आता था, नबी अलैहिस्सलाम को खुद पढ़ना लिखना नहीं आता था, अल्लाह ताला की मर्जी थी कि आप उनको उम्मी बनाया, तो इनको आता था पढ़ना लिखना। इनका मुझे दिखाओ मैं पढ़ता हूँ। तो फातिमा जहरा ने कहा कि वो तो अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं, तो पहले तुम जो हो ना गुसल करके आओ। ठीक है, तुम नजस हो, तुम गुसल कर, तुम मुशरिक हो ना। उन्होंने कहा उनको अब बाकी अहकाम का जो भी था, लेकिन इतना तो पता था कि हाँ गुसल करने से भी इंसान कुछ ना कुछ पाक हो जाता है, अगरचे कि उन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा था उस वक्त, तो रूहानी तौर पे तो पाक नहीं हो सकते थे, लेकिन गुसल करके जिस्मानी तौर पे इंसान पाक हो जाता है कम से कम। तो इन्होंने बात भी मान ली, और इन्होंने बाकायदा गुसल भी कर लिया, और उसके बाद जो है ना वो जो कागजात थे जिनके ऊपर लिखी हुई थी वो आयात, वो इन्होंने देखी और उनको पढ़ा। वो क्या थी, किसी को पता है वो क्या थी? सूरह तौहा की आयात। ठीक है, बिल्कुल शुरू शुरू की आयात, तौहा, मा अनजलना अलैकल कुरआना लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ वमा बैनहुमा वमा तहत अस्सरा वइन तजहर बिलकौली फइन्नहु यअलमु सिर्र वअख्फा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना हल अता का हदीस मूसा। ठीक है, ये उन्होंने पढ़ा, यही आयात थी। ठीक है, इन आयात को पढ़ करके उनके दिल पे ऐसा असर हुआ, उन्होंने कहा ये तो कोई बहुत ही आलीशान किस्म का कलाम, ये तो कोई बहुत ही अजीब बात है जो कि तुमने मुझे दी है पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ी है, चलो तो मैं भी उसको मानता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा मैं भी इसको मानता हूं। तो जैसे ये आवाज उनके हजरत खबाब के पास पहुंची ना, जो पीछे छुपे हुए थे, तो जंप मार करके बाहर आए ना, अल्लाह अकबर उमर। ठीक है, और उन्होंने कहा, गालिबन उन्होंने ही कहा था कि उमर मुबारक हो, मैंने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सुना था कि उन्होंने आपके लिए दुआ मांगी। उन्होंने आपके लिए आपकी हिदायत के लिए दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ आपके हक में कबूल कर दी। अबू जहल के हक में कबूल नहीं करी, आपके हक में कबूल कर दी। ठीक है, तो मैं अल्लाह ने फरमाया कि मुझे लेके चलो, वो जहां कहीं भी हैं मैं उनसे मिलूंगा। इस जुमले में मुझे याद आया कि जब मुझे हजरत जी का पता चला था ना, तो मैंने अपने उस्ताद से यही कहा था कि जहां कहीं भी हैं ये मुझे बताइए, मैं मिलने के लिए उनसे जाऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि हजरत जी कहाँ होते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ ठीक है, पाकिस्तान के होंगे, लेकिन कहाँ रहते हैं इस वक्त, कहाँ पर हैं। मैंने शेख हुसैन से कहा, जहाँ कहीं भी होंगे ना, आई विल गो मीट। ठीक है, पता है फिर जवाब में उन्होंने क्या कहा, ही इज कमिंग टू शिकागो नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते शिकागो आ रहे हैं, जहाँ पे हम उस वक्त रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जहां कहीं भी है ना, मुझे ले करके चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर खबाब जाता है और ये जो है वो लेकर के उनको वहां पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दारे अरकम। ठीक है, दारे अरकम, अरकम बिन अरकम रजुल्ला का छोटा सा मकान था, मकम ये काबतुल्ला से एक साइड पे, शायद जहाँ सफा मरवा वगैरह का एरिया, वहां के करीब में इनका मकान होता था। ये इस्लाम का समझने के पहली खानकाह कह सकते हैं इसको, पहला मदरसा तो नहीं कह सकते लेकिन पहली खानकाह कह सकते हैं। खानकाह इज नॉट ए प्रॉपर लाइक ए प्रॉपर एजुकेशनल सेटअप। ठीक है, वहां पे अल्लाह का जिक्र सिखाया जाता है, वहां पे इबादत सिखाई जाती है और कुछ फराइज वगैरह की थोड़ी बहुत तालीम दे दी जाती है। ठीक है ना, प्रॉपर मदरसे में तो फिर डिटेल्ड एजुकेशन दी जाती है ना। ठीक है, वो तो प्रॉपर स्कूल कॉलेज होता है। खानकाह में ये सब कुछ नहीं होता, वहां पे फराइज की बात की जाती है, अकायद की बात की जाती है, अल्लाह के जिक्र की बात की जाती है, मोहब्बत की बात की जाती है। तो दारे अरकम कह सकते हैं कि इस्लाम की पहली खानकाह थी। तो और खानकाह के अंदर पहुंचे, वहां पे पहुंचे तो वहां पर भी दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, तो अंदर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और उनके साथ वसल्लम के साथ जो है हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और दूसरे सहाबा भी थे। तो अरकम ने गालबन या किसी ने जाकर के दरवाजे से देखा कि भाई कौन है, तो देखा कि उमर है और अभी भी हाथ में तलवार है। ठीक है, तलवार वो अनकॉन्शियसली उनके हाथ में अभी भी थी। तो अंदर आके बताया नबी अलैहिस्सलाम को कि उमर है, उनके हाथ में तलवार है और कुछ अजीब शान के साथ आए हैं आज तो। क्या फरमाते थे जी रहमतुल्लाह अलैह कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, बदले बदले सरकार नजर आते हैं। तो पता नहीं तलवार लेकर के आए, क्या इरादे से आए। तो हजरत हमजा रज़ा ने फरमाया, जिस भी इरादे से आया हो आने दो उसको, मैं भी हमजा हूं। तो आने दो उसको, अगर वो अच्छे इरादे से आया होगा तो हम उसको वेलकम करेंगे, और अगर बुरे इरादे से आया होगा मैं उसी की तलवार उससे लेकर के उसको मार दूंगा। ठीक है ना, हमजा थे वो, बस वो थोड़े दिन पहले ही मुसलमान हुए थे, वो 39th मुस्लिम थे ना, 39th मुस्लिम टू एंटर इस्लाम वॉज हमजा रजा, एंड 40th मुस्लिम टू एंटर इस्लाम वाज उमर फारूक हजरत। ठीक है, तो दरवाजा खोल दिया गया, उमर तशरीफ लाए और नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उमर अतान का कपड़ा ऐसे पकड़ लिया और पकड़ करके ना उसको हिलाया, उमर तुम कब हिदायत पर आओगे, तुम कब इस्लाम कबूल करोगे, क्या वो वक्त अभी तक नहीं आया, समथिंग लाइक दैट, क्या वो वक्त अभी तक नहीं आया कि तुम बात मान लो, बात तस्लीम कर लो। मैंने फरमाया मैं यहाँ पे आपका गुलाम बनने के लिए ही आया। ठीक है, जैसे ही सहाबा ने सुना सबने मिल करके अल्लाहु अकबर का जो नारा लगाया है, मक्का की वादी जो है ना उसे गूंज उठी। ठीक है, और वो अल्लाहु अकबर का नारा लगा करके फिर बात हुई, कलमा पढ़ा और उमर तआला इस्लाम लेकर के आए। और फिर उसके बाद जब नमाज का वक्त हुआ, गालिबन मगरिब की नमाज का वक्त हुआ होगा क्योंकि उस वक्त सिर्फ सुबह और शाम की नमाजें होती थी, तो जो नमाज का वक्त हुआ तो इरादा हुआ कि भाई अब सब नमाज पढ़ेंगे यहाँ पे। उमर तन का एन लगने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या खौफ कर, हमें क्या डर की जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने एग्री कर लिया उनकी इस बात को। ठीक है, तो उस वक्त फिर सारे मुसलमान निकले और एक लाइन की शक्ल में, जिसकी एक एंड पे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे तलवार लिए हुए और दूसरे एंड पे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे तलवार। ठीक है, और ये सारे के सारे वहां पे पहुंचे। उमर तआला ने वहां पे जो भी थे उनको ऐलान करके बताया, किसी को अपनी बीवी को बेवा करना हो ना और अपने बच्चे को यतीम करना हो तो आ जाए मेरे सामने, ठीक है, तो मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। तो सारे डर के मारे खामोश होकर के उधर ही बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, और इन सब मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ वहां पर नमाज अदा करी काबा अल्लाह के बिल्कुल सामने, वरना इससे पहले मुसलमानों ने जमात की शक्ल में नमाज पढ़ी ही नहीं, छुप करके नमाज पढ़ा करते थे, ठीक है। तो ये उमर रजान के ईमान लाने का वाकया था। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी याद आई वो ये कि इसके अंदर सूरह ताहा का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। तो हमारे मशायख हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह में बताया करते थे कि मशायख के नजदीक जो है ना वो कुछ मुशारबात कहे जाती हैं चीजें, मुशारबात, ठीक है। मुशारबात का मतलब क्या होता है? मुशारबात तो प्लूरल वर्ड है ना, तो उसका सिंगुलर जो है वो मशरब होता है, मशरबुन, ठीक है। मशरब किस चीज को कहते हैं? मशरब उस जगह को कहते हैं कि जहां से आप पीते हैं शराब, राइट। शराब तो अरबी का लफ्ज है ना, तो ये पीने वाली चीज को कहते हैं, शरबा यशरबु या पीने वाली, पीना, ठीक है। तो मशरब उस मकाम को कहते हैं जहां से आप पीते हैं, जैसे मस्जिद उस मकाम को कहते हैं जहां पे आप सजदा करते हैं, मक्तल उस मकाम को कहते हैं जहां पे कत्ल किया जाता है किसी को, तो मशरब उस मकाम को कहते हैं जहां से आप पीते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना कुछ मशरब बनाए, ठीक है, अल्लाह ताला ने कुछ मशरब बनाए हैं, और वो मशरब ऐसे हैं कि हर मशरब का ताल्लुक एक नबी के साथ है। उलुल आजम अंबिया, कितने उलुल आजम अंबिया जी को पता है? अंबिया में से कुछ अंबिया हैं जो कि उलुल आजम यानी बड़े आजम वाले, बड़े बड़े हौसले और मकाम वाले बड़े अंबिया। कौन है? कोई और आप बता सकते हैं? कोई भी बता सकता है भाई, उलुल आजम अंबिया आपके ख्याल में कौन होंगे? बताएं।
दाऊद
आदम अलैहिस्सलाम,
अलैहिस्सलाम
दाऊद अलैहिस्सलाम तो नहीं है।
मशहूर
उलुल आजम तो यानी बुलंद मुकाम, सबसे बुलंद मुकाम वाला है। चल आदम अलैहिस्सलाम एक उन्होंने बता दिया। फरहान भाई तो पूछ,
यहाँ
बताए ना फरहान भाई तो।
पे
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, और नहीं जी अरुण भाई,
यूसुफ
यूसुफ नहीं, नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। और जिसके दो नाम याद आ रहे बता रहे नहीं ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते। अच्छा आदम अलैहिस्सलाम हो गए, फिर नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, आप तो पास माशाल्लाह तसव्वुर अंबिया की क्लास ले रहे हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर आपने और भी चंद का पढ़ा था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम एक अनदर मेजर नबी नूह अलैहिस्सलाम थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जिनकी बारी आती है ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है, और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी अलैहिस्सलाम। तो ये छह जो अंबिया है ना, ये उलुल आजम अंबिया कहलाते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबे और मकाम वाले अंबिया ये छह अंबिया है, ठीक है। तो हर मशरब का ताल्लुक जो है ना, यहाँ पे माशाल्लाह ऑनलाइन भी सही जवाब दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और नबी अलैहिस्सलाम, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हर मशरब का ताल्लुक जो है ना वो किसी उलुल अजम नबी के साथ होता है। अच्छा अब जितने इंसान दुनिया में पैदा हुए, जितने भी इंसान, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, ठीक है, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, हर इंसान का भी ताल्लुक जो है ना इन मशारिब में से किसी एक मशरब के साथ होता है, ठीक है। वो कैसे ताल्लुक का मतलब क्या होता है? ताल्लुक है किसी एक मशरब के साथ, उसका मतलब ये होता है कि जो सिफात उस मशरब वाले नबी की होती है ना, वही सिफात जो है वो उसके मशरब से ताल्लुक रखने वाले इंसानों के अंदर भी होती है, ठीक है ना। वो क्वालिटीज कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी खास बातें कुछ बनाई हुई हैं जो कि अल्लाह ताला ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है ना। तो जिस मशरब के साथ जिसका ताल्लुक होगा उसके अंदर उस तरह की सिफात आएंगी। अच्छा ये सिफात जो है, चूंकि काफिर भी मशरब से ताल्लुक रखते हैं, मोमिन भी मशरब से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वजह से इसका ताल्लुक इस्लाम और गैर इस्लाम के साथ नहीं, इस्लाम और कुफर के साथ नहीं, बल्कि दिस इज ह्यूमन क्वालिटीज है ना, फितरती जो जिसको क्वालिटीज कहा जाता है ना, ये है। मिसाल के तौर पर एक चीज जो यहाँ पे वाकये से रिलेटेड है वो ये कि जो मूसवियुन मशरब, मूसा अलैहि सलाम का भी तो एक मशरब हो गया ना, ठीक है, तो मूसवियुन मशरब जो है ना उससे किसका ताल्लुक था? हजरत
मुर्शिद
का भी था, ठीक है, लेकिन मूसा अलैहि सलाम के मशरब से हजरत उमर रज़ियल्लाहु का भी ताल्लुक, ठीक है। तो मूसा अलैहि सलाम की जो क्वालिटीज नजर आती है ना, जो सिफात नजर आती है, वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के अंदर भी नजर आती है, ठीक है। लंबे चौड़े होना, गुस्से के तेज होना, है मूसा अलैहि सलाम भी गुस्से के तेज थे, जब आए ना वहां से और देखा कि कौम जो है वो गौशाला परस्तिश के अंदर मुब्तला हो गई है, तो भाई से आकर के, भाई साहब क्या हो गया ये, हाँ ये कैसे हो गया, ये नहीं काम होना ना, आते के साथ ही दाढ़ी पकड़ ली अपने बड़े भाई की, 3 साल बड़े थे अपने अपने से, ठीक है, आते ही दाढ़ी पकड़ी, और ये क्या कर दिया भाई, ये क्या हो गया, ठीक है ना, कितना गुस्सा आया, ठीक है, हत्ता के बड़े भाई को कहना पड़ा, मूसा तुम मेरी माँ के बेटे, तुम भी मेरी माँ के बेटे हो, मैं भी तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, ये तुम मत करो, मेरी दाढ़ी को छोड़ो छोड़ो भाई, ठीक है।
तौरात
हाँ तौरात की भी जो है सफ़े, इतना गुस्सा आया होता तौरात के सफ़े यूं करके फेंके, ठीक है, सफ़े नहीं थे वो जो टैबलेट थी जो भी थी, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर में गुस्से में काबू आए, फिर उसके बाद जो है वो बात बात करी आगे से। तो इसी तरीके से हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह जो थे हमारे हजरी के जो शेख थे, तो वो भी ऐसे ही थे, ठीक है, वो भी लंबे चौड़े, उनके पास भी जाना वो असा हमेशा असा रहता था, जिस तरह से मूसा अलैहि सलाम के साथ असा का एक खास ताल्लुक है ना, मूसा अलैहि सलाम का, किसी और नबी का असा जो है वो ऐसे किस्से में नहीं आता, मूसा अलैहि सलाम के असा का जो है वो किस्से के अंदर जिक्र भी आता है। तो इसी तरीके से हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके भी असा का, तो बहरहाल इस तरह से होता है। तो ये सूरह ताहा जो है ये भी ऐसा लगता है, देखें सूरह ताहा जो है ये तो शुरू के चंद आयात पे खत्म हो जाती है, यानी अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह ताला की बड़ाई, लेकिन फिर वहल अता का हदीस मूसा, यहां तक तिलावत हुई, मूसा अलैहि सलाम का तذکرہ भी सुना, ठीक है, और मूसा अलैहि सलाम के, यानी अल्लाह ताला ने अपनी बड़ाई बयान करी और फिर फौरन ही मूसा अलैहि सलाम का तذکرہ शुरू कर दिया, और ये पूरा का पूरा पैकेज जो है फिर हजरत उमर फारूक अदाना ने सुना और उनका दिल अपना दिल दे बैठे, ठीक है, और मुसलमान हो गए। तो बहरहाल ये चंद बातें आपके सामने हो गई। अच्छा तो इस तरीके से हजरत जैद बिन सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु जो हैं वो गोया के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के इस्लाम लाने का भी सबब बने। अच्छा इसके बाद चंद बातें और हो गई कि हजरत सईद बिन जैद और उनकी अहलिया हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत भी करी, ठीक है, और हिजरत करके ये इनके एक जानने वाले थे वहां पर हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है, जिनका असल नाम था रफ़ाआ बिन अब्दुल मुंजर अंसारी, रफ़ाआ बिन अब्दुल मुंजर अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा, ये अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा का असल नाम था, वरना मशहूर ही अबू लुबाबा के नाम से, इस्तेवाना अबू लुबाबा, ये रियाजुल जन्ना के अंदर अगर आपने देखा हो एक सुतून है जहां पे अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को बांध लिया था जब उनसे एक गलती हो गई थी, इस्तवाने तौबा भी उसको ठीक को कहते हैं, इस्तवाने तौबा भी। तो बहरहाल इनके घर पे इन दोनों ने जाकर के क्याम किया, और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम ने मवाखात कायम करी, मवाखात कायम करने का मतलब क्या होता है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने
भाईचारा
भाईचारा के एक मुहाजिर साहबी को एक अंसारी साहबी का भाई बना दिया ना, इस तरीके से सबका भाई बना दिया किसी को, ठीक, तो इनको जो है ना फिर राफे बिन मालिक रतान के साथ भाई बना दिया, ठीक है, तो वो फिर एक दूसरे की हेल्प करना शुरू हो गया, पहले यानी अंसारी ने जाहिर इनकी हेल्प करी साहबी ने, और फिर उसके बाद इन्होंने भी बाद में जब ये मजीद इनको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर आगे चला मामला। अच्छा ये हो गया, कोई कुछ कहना चाह रहा था या पूछना चाह, आप कुरान कुछ पूछना चाह रहे,
ये पूछा था कि अगर मौका मिलते हैं तो आपने कोई सोच रखा है कि अगर दूसरा रिश्ता कौन है?
पता था कौन है, गालिब गुमान तो यही है कि पता होगा, क्योंकि कुरैश मक्का को बनी इसराइल के वाकयात का पता होता था, और खुसूसन जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको और भी ज्यादा पता ही होता है। तो एन मुमकिन है कि उनको पता हो, कतई तौर पर यही बात मालूम नहीं। अच्छा फिर एक बस वाक्य और पढ़ करके हम आज की क्लास खत्म करते हैं। वो वाक्य इस तरह से है कि 2 हिजरी में आपको पता है कि इस्लाम का पहला गजवा, पहला मारका काफिरों के साथ जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद भी शरीक हुए, वो पेश आया। वो कौन सा था? गजवा बदर था। लेकिन गजवा बदर एक बड़ी अजीब तरीके से पेश आया। तो वो ये था कि मुसलमानों का कोई इरादा नहीं था कि काफिरों की फौज के साथ जाकर के बाकायदा लड़ेंगे, काफिरों की कोई फौज थी ही नहीं, बल्कि इरादा तो ये था कि एक कुरैश का काफिला निकला था, तिजारती काफिला, जो कि शाम जा रहा था। ठीक है, अब चूंकि कुरैश ने जो है वो मुसलमानों का बहुत सारा सामान लूटा हुआ भी था, जो मुसलमान हिजरत करके गए थे उनको मना कर दिया, नहीं तुम अपना सामान नहीं लेकर के जा सकते हो, इधर ही छोड़ करके जाओ सारा अपना सामान। तो बहुत सारा सामान के ऊपर कुरैश भी कब्जा करके बैठ गए थे। ठीक है, तो अब जब ये काफिला जो जा रहा था ना, तो फिर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि भाई इस काफिले को आपने जा करके ना रोकना है और इनका सामान आपने छीनना है इनसे। ठीक है, तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो नबी अलैहिस्सलाम उस हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस काफिले को फिर रोकने का और उनसे जो है वो सामान लेने का प्लान प्लान बनाया। लेकिन उसके लिए क्या हुआ कि ये काफिला जो है वो शाम तो पहुंच गया, अब इनको वापसी पे रोकना था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत सईद बिन जैद रतानन और हजरत तलहा रजी रतानन को जासूसी करने के लिए भेजा शाम, कि वहां पे जाकर के इस काफिले की मालूमात हासिल करो कि ये कितने लोग हैं और कब ये लोग शाम से निकलेंगे और कब जो है ना किस रास्ते से ये लोग वापस आएंगे, ताकि हम लोग मदीना मुनव्वरा से एक फौज लेकर के जाएं और इन लोगों से फिर सामान इनका लें। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म आया। तो अब ये दोनों जो है वो वहां चले गए, लेकिन हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम को तो इनकी खबर पहुंच रही थी कि हाँ काफिला अब शाम में पहुंच चुका है और जो है वो उसने वापस आना है, लेकिन उन लोगों ने भी स्पाइंग अपनी करी हुई थी। उनके भी स्पाइज होते थे, इनके भी स्पाइज होते थे, इनके स्पाइज ने इनको खबर दे दी, उनके स्पाइज ने उनको खबर दे दी कि मुसलमान तो प्लान कर रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने का। ठीक है, तो अबू सुफियान काफिले के सरदार थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, काफिर ही थे। ये तो बंद हो गया, द होस्ट एंडेड दिस मीटिंग। नहीं ऐसा नहीं कि मैं वो म्यूट हो गया, उन्होंने एंड कर दी। ये तो चल रहा है, दोबारा चल रहा है।
Recording in progress.
अच्छा बस ये वाकया हम थोड़ा सा रह गया, इसको पढ़ के मुकम्मल करते हैं कि अबू सुफियान उस काफिले के सरदार थे। तो अबू सुफियान को जब ये खबर मिली कि मुसलमान तो हम पे अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने ना अपने काफिले का जो नॉर्मल रूट होता है ना, जिसका मुसलमानों को पता चल ही गया था कि इस रूट से ये लोग वापस जाएंगे, उन्होंने अपना रूट ही चेंज कर दिया। ठीक है, और किसी दूसरे रास्ते से वो जल्दी 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 जो है ना वो मक्का मुकरमा पहुंच गए, और उससे पहले ही उन्होंने मक्का मुकरमा खबर भेज दी थी कि भाई वी आर गोइंग टू बी अंडर अटैक, तो वी नीड हेल्प, वी नीड एनफोर्समेंट, हमें मदद की जरूरत है कि भाई कोई हमें अब कोई आर्मी वार्मी बना करके भेजो, हमारी हिफाजत करें मुसलमानों से। तो ये खबर पहले ही मक्का मुकरमा पहुंच गई थी, और वहां पर जो है ना वो अबू जहल ने खड़े होकर के ना लोगों को बोलना शुरू किया कि हाँ हम अब तो जाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों को खत्म करेंगे हम। तो उन्होंने पूरी एक आर्मी बनाई, ठीक है, 1,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, 1,000 बंदों के मुश्तमिल, और बहुत ज्यादा इन लोगों के पास तीरें, तलवार और नेजे और पूरी बॉडी का जो आर्मर था सब कुछ लेकर के ये खूब ढोल तमाशे के साथ, है ना, ये रवाना हुए कि अब मुसलमानों से हमारी लड़ाई होगी, हम उनको खत्म कर देंगे, उनकी तो हैसियत ही कोई नहीं हमारे सामने। इस तरीके से वो सब प्लान करके निकले, काफिला जो है वो बच बचा करके मक्का मुकरमा पहुंच गया। ये यहां पर आ गए, नबी अलैहिस्सलाम को बाद में पता चला काफला तो गुजर गया और ये पूरी की पूरी आर्मी आई हुई है और हमसे लड़ने के लिए आई हुई है। तो फिर जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि नहीं, आपने लड़ना ही है, वापस नहीं जाना, ठीक है। तो लड़ने का हुक्म मिल गया, जैसे कल बात हो रही, तो लड़ने का हुक्म आएगा तब लड़ेंगे ना, ऐसे बगैर आपके हुक्म के ऊपर थोड़ी लड़ेंगे हम। तो इनको हुक्म आ गया था, तो फिर बदर की पूरी लड़ाई हुई। लेकिन ये जो थे दोनों, हजरत सईद बिन जैद रतान और हजरत तलहा रतान, जिनको स्पाइंग के ऊपर भेजा था ना, तो ये दोनों भी जो है वो अपना काम करके खबरें वगैरह भेज करके ये जब वापस आने लगे, तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे और एक जगह लिखा हुआ है कि ये बदर के ही मकाम पर पहुंचे। लेकिन जब ये पहुंचे थे तो उस वक्त तक गजवाए बदर वॉज ऑलरेडी ओवर, वो खत्म हो चुका था, गजवाए बदर मुकम्मल हो चुका था। काफिरों के जो है वो 70 लोग मारे जा चुके थे, 14 मुसलमान शहीद हुए थे खाली, ठीक है, मुसलमानों को फतह हुई थी, फतह मुबीन हुई थी, ये सब कुछ हो चुका था। तो जब ये लोग वहां पहुंचे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो गजवाए बदर में माल गनीमत हाथ आया था, तो वो लड़ने वाले मुजाहिदीन में तकसीम करना था ना, तो इन दोनों को भी उसमें शामिल किया। क्यों शामिल किया? इन्होंने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए शामिल किया क्योंकि इनके ना लड़ने की वजह क्या बनी थी? नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म बना था, ठीक है। तो असल चीज लड़ना नहीं होता, असल चीज तो हुक्म होती है, और हुक्म तो उन्होंने माना था, तो इस वजह से इनको भी इसके अंदर शामिल किया गया। और एक और साहबी भी ऐसे ही थे, वो कौन बताएगा कौन थे जिनको हुक्म दिया गया था? जाने आप सभी तरह हमने कुछ नहीं पूछा जी। उस्मानी गनी रतान, अच्छा उस्मानी गनी रतान को भी माल गनीमत के अंदर हिस्सा मिला, तो उन्होंने भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। अच्छा चलो, इन दोनों के बारे में तो कहा जाए, चलो लड़ाई नहीं लड़ी थी लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल करके इतना सफर किया था और इतना जो है वो मेहनत करी थी, मशक्कत करी थी, स्पाइंग करी थी, और स्पाई का तो आपको पता है ना कि अगर स्पाई पकड़ा जाए उसको उसी वक्त क्रिंच कर दिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। स्पाई की ये सजा होती है हमेशा, आज भी यही सजा है, स्पाई को अगर पकड़ लिया गया ना उसको कत्ल कर दिया जाता है। इन लोगों ने तो भाई अपनी जान खतरे में डाली थी, तो ठीक है बात बनती है कि उनको तो मिलना चाहिए था माल गनीमत में हिस्सा। उस्मान गनी रतान उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो जान भी कोई खतरे में नहीं डाली थी, तो उनको भी माल गनीमत में हिस्सा मिला, क्यों? ये कौन बताएगा? तेरे मुस्लिम
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना गया, उन्होंने
कौन सा हुक्म था? क्यों?
कह दिया कि आप रुके, उनके
जी तो बीवी
लिए
की खिदमत करो। नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को? तुम नहीं जाओ, तुम यहीं रहो, अपने घर में रहो और अपनी ही बीवी की खिदमत करो। क्यों? इसलिए कि बीवी बीमार है, ठीक है ना। अब बीवी नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम की बेटी जरूर थी लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम का हुक्म था, ठीक है। तो अब नबी का हुक्म, द पॉइंट इज हुक्म असल चीज है, हुक्म असल चीज है, ठीक है ना। हुक्म मान करके बीवी की खिदमत करोगे तो भी तुम्हें उतना ही अजर मिलेगा, हुक्म मान करके स्पाइंग करने जाओगे तो भी तुम्हें उतना ही अजर मिलेगा, हुक्म मान करके तुम काफिरों से जंग लड़ोगे तो भी तुम्हें उतना ही अजर मिलेगा। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह वाकया सुनाते थे कि हजरत ख्वाजा अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ना, ये हजरत जी के शेख के ये भी खलीफा हैं, ख्वाजा अब्दुल हमीद, ये आज हयात हैं, अमेरिका में रहते हैं। तो एक दफा हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह उनके घर तशरीफ ले गए अमेरिका, ठीक है, ख्वाजा अब्दुल हमीद दामत बरकात उनके घर पे। तो वहां पे जो है ना वो ख्वाजा अब्दुल हमीद के घर पे बैठे थे और हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा अब्दुल हमीद चाय बनाओ। ठीक है। अच्छा वो चाय बनाना शुरू हो गए, तो अब मुर्शिद आलम ने तो ना बैठे अल्लाह का जिक्र करना है, मुराकबा करना है, सही है, तो उनको भी दिल चाहा कि मैं भी मुराकबा करता हूँ। उन्होंने कहा तुमको मैंने कहा ना चाय बनाओ, तुम चाय बनाओ, तुम्हें मुराकबे का सवाब चाय बनाने के अंदर मिल जाएगा, तुम्हें सारा जो जो भी तजल्लियात और कैफियात जो भी मिले वो तो चाय बनाने में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हुक्म असल चीज होता है, जो हुक्म दिया है ना, चाहे चाय बनाने का हुक्म क्यों ना दिया वो हुक्म, ये असल चीज है, ठीक है। अल्लाह ताला इसी चीज को देखते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र में इनकुम, ठीक है। तुम्हारे दरमियान जो उलिल अम्र है उसकी अताअत करो, उसके ऊपर जो रसूल हैं उनकी अताअत करो, और उनके ऊपर जो अल्लाह है उसकी अताअत करो, बस यू आर गुड, ठीक है ना। यू आर गुड टू गो वेयर, गुड टू गो टू जन्नत, ठीक है। चलें, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह।
Recording stopped.
Thank you.